Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 and 2331-4444. Once again, 2342-1050 and 2331-4444. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra.
धन्यवाद राजेश जी. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे, जो सप्ताह भर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ चर्चा भी करेंगे. इससे आज शनिवार है, हम आपसे शेयर बाजार और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सवाल भी करेंगे और आप सवाल पूछ. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें 2342-1050 और 2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंच में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम शरद.
नमस्कार विभूति, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश लेख.
इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टचेज इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ $642.6 बिलियन. दिस वीक बीएसई सेंसेक्स गेन्ड 819 पॉइंट्स. निफ्टी 50 इंडेक्स एडेड 1%. In the US markets, all three main US indices record solid quarterly gains. Dow gained 5.6%, S&P 500 shot up 10.1%, and Nasdaq rallied 9.1%. And in global crude oil market, both benchmarks finished higher for a third consecutive month. Brent rose 2.4% and WTI gained about 3.2%.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $643 बिलियन के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा. इस सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 819 अंक चढ़ा. निफ्टी में 1% का इजाफा हुआ. अमेरिकी बाजारों में सभी तीन प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में ठोस तिमाही लाभ दर्ज किया गया. डॉब में 5.6% की वृद्धि, S&P में 10.1% की बढ़ोतरी हुई और वैश्विक कच्चे तेल बाजार में दोनों बेंचमार्क लगातार तीसरे महीने ऊंचे स्तर पर रहे. ब्रेंट में 2.4% और WTI में लगभग 3.2% की बढ़ोतरी हुई. और सबसे अहम खबर आज की, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में $14 करोड़ बढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर $642 अरब से अधिक हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि लगातार पांचवें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सप्ताह के स्वर्ण भंडार में $34.70 करोड़ की वृद्धि हुई और अब यह $51 अरब से अधिक हो चुका है. कुल भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति $12.30 करोड़ घटकर $568 अरब पे पहुंच चुकी है. शरद जी, इस खबर को आप किस रूप में देखते हैं?
मुझे लगता है विभूति देश के लिए फख्र की बात है, क्योंकि और इसलिए फख्र की बात है कि ऐसे समय में यह वृद्धि हुई है. और ऐसे समय में रिकॉर्ड स्तर छुआ है जब वैश्विक परिस्थिति, अगर हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो कोई बहुत ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर बहुत जबरदस्त डिमांड बनी हुई है या बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट है, बल्कि यूरोप के कई देश तो इस समय रिसेशन का भी सामना कर रहे हैं या बहुत ही ना के बराबर ग्रोथ है। अमेरिका में भी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव है, पर मैं मानता हूं कि बहुत जीरो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे समय में ये आ रही है, और इसमें खास बात विभूति देखने वाली ये है कि ये कहां से आता है, ये एफआईआईज जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। ऑफकोर्स इसमें एक्सपोर्ट से जो हमारी कलेक्शन होती है वो भी इसमें जुड़ी हुई होती है। तो कुल मिला के हम देखें तो एक्सपोर्ट से, एफपीआई से, और पीछे आप अगर मार्च के महीने में देखें तो मुझे लगता है करीब 50,000 करोड़ रुपए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में, भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। कुछ उसका असर है, बहुत अच्छा रोबस्ट एक्सपोर्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज्यादा उनके पीछे राज छुपे होते हैं, और वो राज मैं यहां पर जो खोलना चाहूंगा वो ये कि ये बता रहा है कि भारत में जो आत्मनिर्भर अभियान है या जो एक्सपोर्ट भारत का होता है, निर्यात जो भारत करता है, वो धीरे 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 उसमें सुधार हो रहा है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है, और मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, वो अब धीरे धीरे करके साकार होता दिख रहा है। और भारत चाइना की बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग में जगह ले रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की आप ग्रोथ भी देखें, जो जीडीपी के आंकड़े हाल में आए थे, तो वहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज रफ्तार पकड़ रही है। और मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब हम इतना भारी भरकम हमारा निर्भरता है चीन के ऊपर, चाहे वो कंपोनेंट्स हो, चाहे मशीनरी हो, प्लास्टिक का सामान हो, खिलौने हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी चाइना से हम लोग मंगाते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके वो कम होता जा रहा है, और आगे एक समय ऐसा आएगा जब भारत अपनी मर्जी से कुछ मंगाना चाहे मंगाएगा, पर ऐसा भारत को अंडर कंपल्शन इसको नहीं मंगाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी खबर है, और मुझे लग रहा है कि भारत के लिए, भारतीय एक्सपोर्ट के लिए, भारतीय इम्पोर्ट के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, और अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलूंगा साथ में कि जो जीडीपी ग्रोथ, जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये जीडीपी ग्रोथ ठोस नहीं है या ये जीडीपी ग्रोथ आप इस बेसिस पे ले रहे हैं, उस बेसिस पे ले रहे हैं, जो भी इस पे आलोचना की जाती है, मुझे लग रहा है उनको एक बड़ा करारा जवाब मिलता है, क्योंकि जब भी आर्थिक पैमानों का आकलन किया जाता है तो उनको सामूहिक तौर पे लिया जाता है और समावेशी रूप में लिया जाता है, उनको इंक्लूसिव मतलब सब चीजों को साथ रख के देखा जाता है। आप अलग से किसी चीज को देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि उसमें विकास नहीं हो रहा, पर ऐसा होता नहीं है।
Our first caller in line with us is from Delhi. Bharat Bhushan is with us. Warm welcome, Bharat. Please go ahead and ask your question.
जी नमस्कार सभी को सर।
नमस्कार
सर, मेरा प्रश्न ये है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FDI ने 2023-24 के खरीफ सीजन में 3,41,00,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद का उन्होंने लक्ष्य रखा था, परंतु खरीदारी 2,41,00,000 टन ही हुई है सर। तो क्या क्या उत्कर्षण FCI के पास ऐसे कैसी, किस आधार पे वो अनुमान लगाती है कि इतनी खरीद होगी, और फिर किस आधार पे वो चूक जाती है 1,00,000 मैट्रिक टन सर, करोड़ मैट्रिक टन कम नहीं होता है। दूसरा सर कि जो हमारे देश में बिजली की जो ताप विद्युत से ज्यादा जो अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है सर, तो इसका कितना क्षेत्र का योगदान कौन कौन क्षेत्र से आता है? धन्यवाद सर।
भारत भूषण जी, आपका पहला सवाल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक अनुमान दिया जाता है साल के बिगनिंग में कि हम इतना खरीदेंगे, और आपने खरीफ क्रॉप का जिक्र किया, 3 करोड़ से ऊपर का उनका आंकड़ा था। पर कम देखिए, जब आंकड़े एस्टीमेट दिया जाता है बहुत सारे उसके बेसिस होते हैं, फसल कैसी हुई ये पहला होता है कि मौसम मानसून कैसा रहा, ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि हमारा जो निर्यात की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, दूसरा ये देखा जाता है। तीसरा उसकी उपज कैसी रही, मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है पर एकरेज कितना हमको निकल के आया, ये देखा जाता है। चौथा देखा जाता है कि हमने जो किसानों को जो लाभ पहुंचाना है वो हमारा बजट और हमारे फंड्स कितना अलाउ करते हैं कि हम भारत सरकार उसको डिस्पेंस कर पाएगी, उसको दे पाएगी। तो और भी कुछ पैमाने होते हैं, ये बहुत सारे पैमानों पर आधारित होता है। और भारत भूषण जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पैमाने हैं ये साल के बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मानसून ले लीजिए आप, कभी ज्यादा हो गया कम हो गया, निर्यात है कभी ज्यादा हो गया कम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर करता है, और प्रोडक्टिविटी है, सॉयल की प्रोडक्टिविटी है, उपज है कि पर एकर कितनी उपज हो रही है, पर बीघा कितनी उपज हो रही है, कौन से क्षेत्र से खरीफ का क्रॉप ज्यादा आ रहा है। प्लस जो सरकार ने जो खरीद करनी है उसके लिए सरकार ने कितना फंड एलोकेशन किया है, तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है। पर इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है भारत भूषण जी, कि हमारे पास जो जो भंडार है खरीफ के, वो भंडार पर्याप्त है। और जो गरीब कल्याण योजना जो चल रही है, जिसमें 5 किलो अनाज सरकार ने अपने आप को बाध्य किया है देने के लिए 2029 तक, अगले 5 साल तक, और पीछे भी ये चला आ रहा है कोविड के टाइम से, तो मुझे लग रहा है कि हम कई दफे सांकेतिक उसमें इशारा ले सकते हैं। सांकेतिक दृष्टि से ये पता लगता है कि हमारे पास किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है, भले खरीद कम हुई हो या ज्यादा हुई हो, और उसकी उसकी भरपाई, अगर वो कमी की वजह से कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। आपका दूसरा सवाल रिन्यूएबल एनर्जी से था, ऐसा कोई विशेष आंकड़ा नहीं है, बाकी भारत सरकार का फोकस सोलर पे ज्यादा है। हम सोलर की बात करें, विंड मिल्स की बात करें, हम बायोफ्यूल की बात करें, हम एथेनॉल की बात करें, तो सबका अपना अपना योगदान है। पर फिलहाल ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई ऐसा आंकड़ा तो सरकार नहीं जारी करती कि रिन्यूएबल एनर्जी में कितना विंड से आएगा, कितना सोलर से आएगा। अब ये कितने गीगावाट प्रोडक्शन हो रही है उस पर निर्भर करता है। पर सोलर पर प्रधानमंत्री जी ने भी जो अभी स्कीम अनाउंस करी है, सूर्योदय स्कीम, जिसमें 1 करोड़ परिवारों के छत पर जो सोलर प्लांट लगाने का प्लान है, उसको देखते हुए और भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स है उनको देखते हुए लगता है कि सोलर पे काफी फोकस है। इसके अलावा मुझे लगता है एथेनॉल के लिए भी हम 20% लेवल पे कमिटेड हैं, और विंड मिल्स पे भी हैं, क्योंकि विंड मिल पूरे देश में नहीं हो सकता, सोलर तो हमारे पूरे देश में बहुत अच्छी सनलाइट आती है, सूर्य की रोशनी आती है, तो इसलिए उस पर फोकस ज्यादा है। बायोफ्यूल्स पे भी रिसर्च चल रही है, हाइड्रोजन पे भी चल रही है। कोई ऐसा बहुत प्रिसाइस आंकड़ा तो नहीं है, पर आपकी बात का मैं एक उत्तर ये दे सकता हूं कि सोलर पर काफी फोकस इस समय है।
वी हैव फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली विद अस, एंड इफ यू वांट टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन देन गिव अस अ कॉल एट 2342-1050 और 2331-4444। फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड इन बाय अतनु शाह। अतनु, अ वार्म वेलकम।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू आवर रिस्पेक्टिव कोहली जी सर, नमस्कार सर। माय क्वेश्चन इज हु आर कंज्यूमर एंड व्हेन कंज्यूमर इन्फ्लुएंस बाय ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हेन एंड हाउ गवर्नमेंट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल एज ए कंज्यूमर एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड रिजल्ट आवर करेंसी इंडियन करेंसी इज नॉट एट ए गुड पोजिशन। Thank you, sir.
Well, Mr. Tanu, although your first part of the question is not very, very clear, but I can pick up from the words you spoke, because consumer, you said, what role does consumer play and what role does consumer play in infrastructure? Well, at the end of the day, all infrastructure which is being built in the country is open to consumers. I mean, it is people like me and you who use these, for example, there are highways, there are expressways, there are railway stations, there are airports. So ultimately, it is the consumer, based on the requirements of the consumer. I think infrastructure policies are formulated, is what I can say, that it is the consumer demand. So whenever there is an infrastructure project finalized, you know, there is always a research done, a survey done, that what is the footfall in that area, how many passengers fly, how many cars move in such and such area, what is the population of that area, what is the catchment area. So all these factors are analyzed and then, you know, decisions are taken. So consumers directly impact, you know, as far as the infrastructure is concerned. I suppose that's what you meant to ask, although, as I said, question wasn't very clear.
I think it is also to do with when does a government becomes a consumer?
Well, government becomes a consumer, you know, in many ways. I mean, you take, for example, electricity. If there is private electricity production, well, a lot of government offices, a lot of government projects, they also consume, be it water. If there is water production being done at a private hydropower plant or something, government becomes a consumer there as well. And, you know, you sitting here and you have a cup of tea, you come from the government. So, there's, you know, consumption of everything, government cannot keep itself aloof from consumption. The second part of question was Indian currency. Mr. Tanu, I need to correct you there, because Indian currency right now is not doing badly at all. In fact, only against US dollar, we are around 83 or so. But as far as other currencies are concerned, I am sure you missed seeing the report, which said that Indian currency has been amongst the best performing currencies across Asia. So I think you just need to do a little more research and see as to how Indian currency is doing, whether it is vis-a-vis euro or vis-a-vis the pound, vis-a-vis the yen. Only against US dollar, because US dollar is an international currency and there are so many transactions being done in US dollar, I mean, on and off. So I think just you need to correct yourself against rest of the currencies, Indian, and even against dollar. It's been fairly stable for the last several months now. There was a time when a rupee had started losing some value, but it has managed to hold itself, and I think it's one of the best performing currencies right now.
इसी बीच अगले कॉलर हैं मुंबई से हरीश. हरीश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
नमस्कार सर.
नमस्कार.
हेलो
जी. जी सवाल पूछे अपना.
जी सर, मेरा सवाल सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है.
किससे?
कुछ प्रॉब्लम सेमी कंडक्टर.
सेमी कंडक्टर.
हाँ जी बताइए.
उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है क्या?
बोलिए.
हाँ, सेमी कंडक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग में?
सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हरीश जी, हालांकि आपके शब्द पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे. हम श्रोताओं को ये प्रार्थना करेंगे कि फोन की पोजीशन अपनी ठीक रखें, रेडियो सेट्स ऑफ रखें जब आप बात करते हैं. आपके शब्द बहुत हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हम चाहते हैं कोई शब्द मिस ना हो. पर सेमीकंडक्टर में भारत ने बहुत अच्छी तरक्की करी है. आपको याद होगा अभी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है फैक्ट्रीज की, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, भारत सरकार की तरफ से भी वक्तव्य आए हैं कि इस साल के एंड में आपको भारत से पहला सेमीकंडक्टर चिप बनता दिखेगा. और मुझे लग रहा है आने वाले साल सेमीकंडक्टर में, जिसको हम फैब भी कहते हैं, चिप्स भी कहते हैं, वो भारत का होने वाला है. जो जगह आज ताइवान के पास है, उनकी सबसे बड़ी कंपनी टीएसएमसी है वहां पर, जो उसके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, मुझे लगता है भारत उसकी स्थान ले लेगा जल्दी. और भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स प्राइस भी बहुत रीजनेबल होगी उनकी, और उनकी सप्लाई में इंटरप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. बहुत कठिन दौर था जिससे हम गुजरे हैं, और ये आपको शायद जानकारी होगी कि सेमीकंडक्टर को सेटअप करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री होती है. पर भारत ने उसमें बहुत बड़ी सफलता पाई है.
जितेंद्र फ्रॉम जयपुर जॉइन्स अस नाउ. वार्म वेलकम जितेंद्र.
हाँ, थैंक यू. हाँ सर, ये बोला था कि आपके बताया अनुसार मैंने तो कोई भी सेक्टर का हमने तो बेच दिया था, लेकिन मेरे कोई परिचय के हैं उन्होंने नहीं कुछ बेच नहीं पाए. उनका गवर्नमेंट का पावर सेक्टर है और रेलवे सेक्टर है और बैंक सेक्टर है, और 200-250% का प्रॉफिट है. तो क्या उनको बोले क्या बेच देने के लिए अभी किसी से, या होल्ड करने के लिए?
जितेंद्र जी देखिए, अगर उनका जो लक्ष्य लेके चले थे कि मेरा पैसा, आपने कहा 200-250% रिटर्न आ रहा है, तो मैं तो इसको बड़ा अच्छा रिटर्न मानता हूं. 200-250% रिटर्न हो सकता है आपका रिटर्न 400-500% भी रहा हो, पर 200-250% भी कम नहीं होता है. तो मैं तो इसी में किसी को मानता हूं जितेंद्र जी के प्रॉफिट को बुक करके चलना चाहिए. बीच बीच में प्रॉफिट जब जब हो रहा है उसको बुक करके चलिए. आप दोबारा जब जब डिप आए तो दोबारा एंट्री लीजिए. एक ही स्टॉक को लंबे समय तक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत कई बार बहुत बड़ा मुनाफा भी हो जाता है, पर उसमें लॉस होने का या अपना आपका प्रॉफिट इरोड होने का भी डर रहता है. तो मेरी सलाह यह रहती है, तो आप अपने मित्र को यह सलाह दें हमारी तरफ से कि अगर उनको 200-250% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है. बल्कि आप सलाह देते टाइम उनसे कहिएगा आपको पार्टी वार्टी भी साथ में दें, क्योंकि आपकी सलाह से वो इतना मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे. जी,
मूविंग ऑन. इन द हॉलीडे शॉर्टेंड वीक द ब्रॉडर इंडस्ट्रीज परफॉर्म्ड इन लाइन विद द मेन इंडस्ट्रीज अमिड वॉलेटिलिटी. The support from FIIs narrowed the current account deficit in Q4 and mixed global cues led equity indices to finish near record highs on the final day of the FY24. This week, BSE Sensex gained 819 or 1% to end at 73,651, and the Nifty 50 index added 260 points or 1% to finish at 22,326. Among broader indices, the BSE small cap, mid cap and large cap indices rose 1.8%, 1.4% and 0.6% respectively. On the sectoral front, the Nifty Realty Index gained 5%, Nifty Oil and Gas was up 2%, and Nifty Auto and Healthcare Indices added 1.7% each. In comparison, Nifty Media Index shot 3% and Nifty Information Technology Index added a loss of 0.8%. At this point...
इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ हैं आरएस दहिया जी. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है दहिया जी, अपना सवाल पूछिए.
सर नमस्कार.
दहिया जी अपना रेडियो सेट जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए.
ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. अच्छा, माय स्पेशल रिक्वेस्ट टू कोहली जी इज देयर आर 3 स्मॉल क्वेश्चंस. फर्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड द न्यू टैक्स रिजीम वेरी अट्रैक्टिव. मेनी पीपल आर नॉट फाइलिंग रिटर्न एज पर दैट. There is no proper feedback system from the taxpayers and between the government income tax department.
they have not got the really the feel of the expectation of the taxpayers. And my next question is, when we come, how we can meet personally Sarad Kohli ji and express our gratitude and thanks to him for sharing his knowledge?
Okay. Mr. Dhaiya, coming to the first part of your question, you know, I think I need to just update you with this information that the new tax regime recently has been made. In fact, in the last budget, it was made because this budget was more of a vote on account. It wasn't a proper budget. So we're going to have a budget. And last time when the budget came, that is the budget before this, it was made quite attractive. In fact, now up to 7 lakh rupees, there is no tax. If you take the Section 87A rebate, which is given, up to 7. So I think new tax regime, Mr. Dhaiya, is an evolving phenomenon. Initially, when it came, very, very few people opted. Today, let me just pass on the statistics to you that more than 35-40% have now opted for the new regime. So I think it's an evolving mechanism. And it is going to gradually get on. And I think government is very slowly but surely trying to move more and more taxpayers. And you also spoke about feedback system.
Yeah.
So I think there is a very active feedback system, which today in the days of social media and very active media, there is no question of the voice of the taxpayer not reaching, you know, the government. In fact, you're speaking now, so I'm sure our voices are reaching somewhere down. So I think government is very, very concerned. It's very sensitive. और आप निश्चिंत रहें, आपका बहुत बहुमूल्य फीडबैक है, वो सरकार तक पहुंचता है, पर एक दो लोगों के फीडबैक पे कई बार एक्शन नहीं होता है, जब बहुत सारे लोग उसी बात को बोलने लगते हैं, और when the government feels that yes, this is voice of people and this is the need of the hour, then they take the decision. I mean, हमें ऐसा लगता है कई बार, you know, राजेश and विभूति would agree with me, that whatever I say, you know, the government has to agree because I have a say in the government for the simple reason. But, you know, the fact of the matter is that it's democracy. A lot of people have to speak. And when government, there is a very active feedback. So your second question was how to meet me. Hamari aapki mulaqat to Dhaiya sahab radio par ho jati hai. Main bhi mahine mein ek do bar aata hoon aur main aake aap logo se interact karta hoon. और मैं सोशल मीडिया पर भी हूं, तो व्यक्तिगत मुलाकात कभी अगर मौका लगा, मेरी किस्मत अच्छी हुई, तो हो सकता है आपसे कहीं किसी मोड़ पर, किसी मकाम पर आपसे मुलाकात हो जाए.
एंड शरद, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द फिगर्स, द आईटीआर फाइलिंग्स बाय टैक्स पेयर्स इंक्रीज बाय 90% इन द लास्ट 9 ईयर्स.
यस, एब्सोल्युटली. 8 करोड़ रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड एंड दे यूज्ड टू बी, यू राइट, इन द लास्ट 10 ईयर्स बिफोर दे यूज्ड टू बी व्हाट, वन और टू करोड़. So I think the number of taxpayers are growing. It is on the basis of the prosperity which is coming to the country.
Kush from Raigarh joins us. Kush, a warm welcome.
Ji.
Sawal puchhe please.
Ji, Sarat sir ne ek bar kaha tha ki jitne log kush hote hain unka bhai law zarur hota hai, to mera bhai law zarur hai.
Are wah, ye to bahut badhiya hai, bahut achhi, mera guess theek nikla hai. Ji.
सर, मेरा सवाल ये है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है और इसका स्टॉक पे क्या असर पड़ता है, और दूसरा मेरा सवाल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को विस्तार में बता दीजिए सर.
देखिए, विंडफॉल टैक्स कुछ, जब ऑयल की प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर नीचे जाती हैं, तो सरकार ने इसको कुछ समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था कि किसी को भी अनावश्यक प्रॉफिट या अनावश्यक यू नो पैडिंग जब हो जाती है, कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस मार्केट में जब प्राइस बहुत होती है, तो यहां पर हम उसी रेट पर हम क्रूड को देते रहते हैं या मार्केट का प्राइस वही रहता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस प्रॉफिट को का लाभ सरकार को भी मिलना चाहिए, और सारा का सारा लाभ जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए. तो इसलिए जब ये ऊपर नीचे होता है, आप देखते होंगे कि इसका जो है स्टॉक मार्केट पे उन स्टॉक्स पे कई बार आपको असर दिखाई देता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पूछा, जो हमारे देश से आने और जाने वाली जो पेमेंट्स होती हैं, जो पेमेंट इन और पेमेंट आउट होती है, उनको जब हम आपस में सेट ऑफ करते हैं, उनका जब हम उनको उनका इन और आउट को कंपेयर करते हैं, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं. पर मैं आपको कुछ ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए ज्यादा काम का बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है. आम आदमी के लिए मैं समझता हूं जो मतलब की चीज है वो ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो ज्यादा काम का है. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फिस्कल और मैक्रो लेवल पर एनालिसिस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जानकारी के लिए जानना चाहते हैं. मार्केट मंत्र तो है ही, इसीलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं.
सो डज दिस रिफ्लेक्ट ऑन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज वेल?
इट डज. 642 बिलियन डॉलर के अगर हमारे आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व राजेश और विभूति ने अनाउंस किए, मैं समझता हूं गदगद हो गया होगा लोगों के मन सुनते हैं. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ डिलाइट. यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर फॉरेक्स रिजर्व.
Moving on, the U.S. equity markets were closed for the Good Friday holiday this week. However, the Dow rose 0.8%, the S&P 500 advanced 0.3%, and the Nasdaq slipped 0.3%. In March, the Dow climbed 2%, and the S&P gained 3.1%, and the Nasdaq added 1.7%. For the quarter, the Dow gained 5.6%, the S&P 500 shot up 10.1%, and the Nasdaq rallied 9.1%. And Brent rose 2.4%, and WTI gained about 3.2%. Both benchmarks finished higher for a third consecutive month. Oil prices jumped more than $1 a barrel, closing out the month higher on the prospects of OPEC Plus staying the course on production cuts, ongoing attacks on Russia's energy infrastructure, and a falling U.S. rig count tightening crude supplies.
और इसी बीच अमित हैं गुरुग्राम से. जी अमित जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी. आई हैव टू क्वेश्चन फॉर मिस्टर कोहली.
यस
सर, वन इज सर हाउ डू आई ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, कैन यू गाइड मी, नंबर वन. एंड नंबर टू, इज देयर एनी policy in the international market for, say, SIPs or just like mutual funds?
Yes, Amit. There is very much. In fact, I'll combine both your questions to answer in one because I think we must be running out of time. So, yes, you can trade in international markets. You set up a DMAT account. For example, if you want to start in U.S., which most Indians do, you must be aware you can invest up to $250,000 per annum. तक आप बाहर भेज सकते हैं. यू कैन यूज दैट मनी फॉर ट्रेडिंग. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विच आर अवेलेबल इन द यूएस मार्केट, जस्ट द वे इट इज डन हियर. सो डीमैट अकाउंट इज सेट अप एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रेड इन डाओ और यू वॉन्ट टू ट्रेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यू वॉन्ट टू ट्रेड इन एनी इंडाइसिस, यू वॉन्ट टू ट्रेड इन एनी, यू कैन बाय अ टेस्ला और यू कैन बाय अ एनवीडिया और यू कैन बाय एनीथिंग. आई मीन इट्स ऑल ओपन टू पीपल. $250,000, अ डिक्लेरेशन इन योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज टू बी मेड लेटर.
समय की कमी है और शरद जी कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू सो मच.
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टचेस इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ $642.6 बिलियन. दिस वीक बीएससी सेंसेक्स गेन्ड 819 पॉइंट्स. In the U.S. markets, all three main U.S. indices record solid quarterly gains. And in global crude oil market, both benchmarks finished higher for a third consecutive month. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.